ओम शांति। बाबा की बेहद घर पांडव भवन में तपस्या के लिए आप सभी पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत। बोकारो से कौन कौन आए हैं हाथ ऊपर करेंगे? हाँ, काफी भाई बहने आए। और दूसरे नाभा से कौन है? नाभा से बस सिर्फ बोकारो के हैं, बहुत अच्छा। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ? ₹1950 में जब बाबा हैदराबाद से पूरे यज्ञ को लेकर भारत में आए तो माउंट आबू में आए। शुरू में भरतपुर राजा की ब्रिज कोठी उसमें आए, वहां भी एक होटल है, सनराइज होटल। उसके बाद कोटा हाउस में आए, धौलपुर हाउस में आए और फिर ये पोकरान हाउस जो बाबा का पांडव भवन बन गया। बाबा, मम्मा, दादियां, सभी आदि रत्नों ने तपस्या भूमि, कर्म भूमि, यहां नेचुरल बाबा हमें याद आते हैं, क्योंकि खुद आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा परम पिता शिव बाबा ने अपना कर्तव्य किया, इसलिए इसे तपोभूमि, वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि कहते हैं। बाबा मुरली में भी बताते हैं ना कि बाबा ने ये मधुबन क्यों रचा, कि बच्चे यहां आए और तपस्या करें। बाबा के घर में रिलैक्स हो जाए, अपनी बैटरी को चार्ज करें, अपने अपने घरों में रहते हैं तो वहां तो घर कारोबार संभालना होता है, भाइयों को नौकरी धंधे पर जाना होता है, वहां पुरुषार्थ करने का विशेष अधिक टाइम नहीं मिलता। रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं, रोज का मुरली क्लास कर सकते हैं और उसके बाद तो फिर मुरली क्लास करके भागते हैं सभी। दीदी घर में काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नौकरी धंधे पर जाना है, फिर तो दौड़ते हैं। इसलिए बाबा ने ये मधुबन बनाया। कि यहाँ आओ बाप दादा के घर में, यहाँ आराम से रहो, सब प्रबंध तैयार मिलेंगे। न माताओं को भोजन बनाना, रोज उठ के सोचना पड़ता है ना आज क्या बनाए। और भाइयों को न नौकरी धंधे पर जाना। तो ये जो भी 3-4 दिन आपको मिले हैं वो स्व उन्नति के लिए मिले। कि खुद को देखो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। हम ज्ञान में चलते हैं पर शांति से बैठकर खुद को देखो कि कैसे चल रहे। पूरे निश्चय से, पूरी लगन से, उमंग उत्साह से चल रहे हैं या ढीला ढाला चल रहे हैं? खुद को तो खुद ही हम देखेंगे ना। अब तो ये परिवार भी हमारा बड़ा हो गया। 69 में जब हम मधुबन आए पहली बार तो 100 लोग बस रह सकते थे, और मधुबन से पत्र आ जाता था कि हाउसफुल हो गए मधुबन। छोटा परिवार था, बाबा दादियां, व्यक्तिगत रिलेशन में हम रहते थे और ध्यान देते थे, बाबा मम्मा दादियां सब। अब परिवार बड़ा हो गया ना, हमारी निमित बहने किस किस पर ध्यान देगी? ओवरऑल ध्यान दे सकती, पर व्यक्तिगत तो हर एक को खुद अपने आप को देखना होगा ना। तो हमारी मंजिल कौन सी है, कहां हमें पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है? कर्मातीत बनना। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, यही मंजिल है ना सबकी। हाँ, मन में क्या लक्ष्य लिया है? जितना हो सके उतना करेंगे या लक्ष्य है बाप समान बनना है? अगर ब्रह्मा बाप बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। तो मंजिल है कर्मातीत बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई पूछते हैं, आप कहा जाते हैं क्या लक्ष्य है, तो क्या बताते हो? क्या बताते? मनुष्य से देवता बनना बताते हो ना, तो पता है ना सबको कि देवता बनना माना क्या बनना है, देवताओं की महिमा क्या है? सर्व गुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ये बुद्धि में याद रहता है ना कि देवता बनना माना क्या बनना है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि ऐसे ही ड्रेस पहन के ताज पहन के बैठ जाना, वो बात नहीं है ना। हमें क्लियर है, हमें याद रहे रोज कि इस ज्ञान और योग की पढ़ाई से हमें क्या बनना है। तो कितनी ऊंची मंजिल है। मंजिल ऊंची है पर असंभव नहीं है, पॉसिबल है। हम मेहनत करेंगे रोज। बाबा कहते हैं ना कि मेहनत की बात है, पुरुषार्थ पर सारा मदार है। तो मंजिल कहाँ है और समय की मार्जिन कितनी है। समय का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भी क्षण अंतिम क्षण बन सकते। देख रहे हो ना आजकल न्यूज में भी पढ़ते हो सुनते हो, और ईश्वरीय परिवार में भी देखते हैं। कभी भी आत्मा पंछी उड़ जाता है। संगम युग के अंतिम चरण में आ चुके हैं, लग रहा है सबको ऐसा। हाँ, कितने वर्ष पूरे हुए संगम युग के? 86 वर्ष पूरे हो गए। 87वीं शिव जयंती मनाई ना। संगम के 100 वर्ष भी मान ले भक्ति में जो गाया है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, उस हिसाब से भी अंतिम चरण में तो आ ही गए ना, और उसमें भी हमारा कितना समय बाकी है किसी को भी पता है नहीं। ये बातें बाबा नहीं बताते। कितना भी कोई पूछते हैं विनाश कब होगा, तो बाबा कहते हैं, एक बार अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा कि नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। नहीं तो लोग कहेंगे ना कि भगवान ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फेवर किया, हमें तो बताया नहीं। बाबा तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे ना। ड्रामा का नियम है ना कि ड्रामा होता जाए, ऐसे सीन खुलते जाए। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले से थोड़ी बता देगा कि अब ये सीन आएगा। और बाबा ने हमें कहा है कि जो कुछ होगा वो अचानक होगा। देखो सब जानते हैं बाबा के बच्चे, है ना। तो टाइम की मार्जिन कितनी है। और हमारी तीसरी बात, चलने की स्पीड कितनी, हमारी चलने की स्पीड कितनी है। हर एक अपने आप को देखो, एक बुजुर्ग बाबा और एक युवा एक रास्ते से चल रहे थे। युवा ने पूछा बुजुर्ग से कि बाबा बताइए ये गांव पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, फिर जवाब नहीं दिया। वो युवा आगे निकल गया। तो बाबा ने बोला, रुको, तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे। बोला, जब पूछा तब आपने नहीं बताया। कहता, मैं आपके चाल की स्पीड देखूं फिर बताऊंगा ना कि तुम कितनी मिनट में पहुंच सकोगे। तो अपने पुरुषार्थ की स्पीड देखो। बाबा तो समय अनुसार कब से हमें कहा है तीव्र पुरुषार्थी बनो। हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है बाबा का कहना और हमारा करना। सोचने में देखते हैं, करते हैं, करते हैं, ऐसे टाइम नहीं गंवाना है। एक बार बाबा ने कहा था कि लास्ट में आने वाले भी फास्ट और फर्स्ट जा सकते हैं अगर समय और संकल्प वेस्ट ना करें, अपना हर संकल्प, हर सेकेंड, हर श्वास सफल करें तो आगे जा सकते हैं। तो अपने ब्राह्मण जीवन का इस अलौकिक मर्जी वे जीवन का हिसाब देखिए। अगर लक्ष्य है तो हम बन सकते हैं, कर सकते हैं। बाबा ने हर संभव मदद हमें कर दी है। एक तो हमें अब कुछ भी खोजना नहीं है, ढूंढना नहीं है, क्योंकि हमें सत्य मिल चुका है। मिल चुका है, निश्चय है ना? हमें स्वयं भगवान मिले हैं। भगवान ने संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। भक्ति में तो भटकते थे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक देवता से दूसरे देवता के पास, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में, एक गुरु से दूसरे गुरु में, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में भटकते थे ना। सत्य मिल जाता तो आत्मा संतुष्ट हो जाती, उनका भटकना समाप्त हो जाता है। हमें सत्य मिल चुका है, इसलिए अब हम भटकते नहीं। न मन से भटकते हैं न तन से भटकते हैं। हर सत्य बाबा ने बता दिया। भक्ति में कहते हैं ना, शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। सारे भेद बाबा ने खोल दिए। ज्ञान सागर बाप हम बच्चों पर बलिहार गया है। कोई राज बाबा ने छिपाए नहीं, पूरा सद ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया। भक्ति में हम पावन नहीं बन पाए क्योंकि सही ज्ञान नहीं था, सच्चा गाइड नहीं था। अब तो स्वयं भगवान हमारा गाइड है, सतगुरु है। बाबा ने पूरा रास्ता हमें बता दिया। अब हमें अपने आप में देखना है, मेरी लगन कितनी है। मेरी तीव्र इच्छा है कि बाबा संपूर्ण पावन संपूर्ण दिव्य बनाने आए हैं, तो हमारी एक रस लगन है, अपने आप में देखना है और खुद ही खुद के जिम्मेवार बनकर खुद ही खुद में उमंग उत्साह भरते रहो। देखते हो ना रोज की मुरली में बाबा कितना उत्साह भरते। आज भी बाबा ने क्या कहा, खुशी रहने की विधि क्या है? आज की मुरली में क्या कहा बाबा? विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। कोई भी बीमारी आफत आती है, खुश रहो, हिसाब किताब चुकते हो रहे। अब ये बीमारियां, ये विघ्न समस्याएं विदाई ले रहे, सतयुग में तो आएंगे नहीं, ये हमसे विदाई ले रहे, तो खुशी खुशी हिसाब किताब चुकाना है। ऐसे नहीं कि बीमारी आए, मुसीबत आए, विघ्न आए तो दुखी हो जाए, बाबा से लड़ने बैठ जाते हैं कहीं, कि बाबा के बने तो भी हमें विघ्न क्यों आए, क्यों हमने बाबा का बनकर बाबा पर उपकार कर दिया क्या? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, राजी योगी बने, हमारे अपने कल्याण के लिए बने हैं ना। बाबा ने बनाया, उपकार मानना है कि बाबा से लड़ना है? कई नाराज हो जाते हैं ना बाबा से, नहीं, बाबा ने रास्ता बता दिया। बाबा कितना प्यार करते हैं, मुरली में दिखता है ना बाबा का प्यार। बाबा कितनी हिम्मत भरते हैं, कितना उमंग उत्साह भरते, कितना नशा चढ़ाते हैं, इसमें बाबा को कुछ लेना देना है क्या? लेना देना तो हमें ही है ना। हमें ऊंचा बनना है, उच्च पद पाना है, पूरा वर्षा लेना है, इसलिए हमें पूरा लक्ष्य पूर्वक, लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सिंसियरिटी से चलना है। ज्ञान मिल गया पर चलेंगे भक्ति की तरह कि जितना हो सके उतना करो बस। तो ये तो भगत की तरह चल रहे हैं। जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर चलते हैं। कल की मुरली में भी, कल परसों की मुरली में भी था ना, पूरा समर्पण कर, पूरा सरेंडर हो जाओ, कुछ भी वेस्ट ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समय कौन सा है, ये कौन सा समय है, संगम युग का, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। भक्ति में हर 4 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है, उसमें भी भक्त लोग पुरुषोत्तम मास में अधिक पुरुषार्थ करते हैं। जितना हो सके तप, दान, पुण्य, यज्ञ, होम, हवन, भजन, कीर्तन, कथा करते हैं कि अधिक मास में जितना भक्ति कर सके कर लो, फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अधिक पुण्य कमाने का मास कहते। तो ये अधिक मास किसका यादगार है? संगम युग का यादगार। लोग 4 युग को जानते हैं, इस 5वें संगम का ज्ञान तो बाबा ने दिया ना। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया नहीं जानती है कि ये संगम युग चल रहा है, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है, दुनिया नहीं जानती है। वो तो बिचारे कलयुग के नजारे देख रहे, दिन रात फिकर चिंता में, दुख में है कि संसार में क्या क्या हो रहा है। पर हम तो जानते हैं ना, हम तो जानते हैं ना कि ये संगम युग है, भगवान आया हुआ है, ये कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। जितना महान बनना चाहे, जितना पवित्र बनना चाहे, जितना सत्कर्म करना चाहे, पुण्य जमा करना चाहे, अभी कर सकते हैं, फिर मौका नहीं है। और कोई युग में और कोई जन्म में मौका नहीं, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में अभी एक ही बार बाबा आते हैं। अभी हम अपना मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, अपने गुण, कला, विशेषता, संबंध, संपर्क, समय, जो कुछ सफल करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि रोज बाबा श्रीमत देते। हम अपनी मनमत पर चलें, परमत पर चलें, गुरुमत, शास्त्र मत पर चलें, रिजल्ट देख लिया ना, क्या परिणाम आया? हाँ, क्या रिजल्ट आए? हम ही कलयुगी बन गए, तमो प्रधान बन गए, पूरी सीढ़ी उतर गए। सीढ़ी का ज्ञान दिया है ना बाबा ने, कि द्वापर युग से मनमत परमत गुरुमत शास्त्र मत पर चले तो हम तो कलयुग के अंत पर पहुंच गए। बाबा कहते हैं ताज गया, पवित्रता का ताज भी गया, रत्न जड़ी ताज भी गया, टोपी भी चली गई, और बाल भी चले गए। सब कुछ गंवा दिया ना, क्या रहा? उतरती कला हो गई। तो अब तो सब जाग गए हैं ना, हाँ? बाबा का ज्ञान आत्मा को जगाता है ना, सेंसिबल बनाता है। अब तो दिव्य बुद्धि सद्विवेक आ गया ना, कि अब मुझे मन मर्जी से नहीं चलना है। नहीं तो कहते हैं ना घर में, मेरी मर्जी, मुझे करना होगा तो करूंगा। अब अपनी मर्जी पर नहीं चलना है, क्योंकि अपनी बुद्धि पूर्ण शुद्ध तो नहीं बनी है ना अभी भी। अब बाबा के श्रीमत पर चलना है। भल कितने भी पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्रियां ले ली है, वो दुनियावी ज्ञान में है ना, हमें तो बाबा से सद्बुद्धि प्राप्त कर लेनी है, हमें ज्ञान में मास्टरी प्राप्त करनी है, हमें योग में मास्टर बनना है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा मुझे प्रिय है। योगी बनने का अर्थ है, गीता में स्पष्ट कहा है, योगी तो मेरा ही स्वरूप है। योगी बनना माना मास्टर गॉड बन जाना, बाबा जैसा बन जाना, वो है सच्चा पक्का योगी। ये समय है एक का, पदम गुणा प्राप्त कर देगा, संगम पूरा हो जाएगा, ये वरदान भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए संगम के इस अंतिम रहे सहे समय में जाग के चलो। ब्राह्मण बनने के बाद भी कई तंत्र अवस्था में चलते हैं, पूरे निंद्रा अवस्था भी नहीं, पूरी जागृत अवस्था भी नहीं, उसको तंत्रावस्था कहते। इसलिए ये समय है ब्राह्मणों को जागना है। ये बच्चे खुचे थोड़े से समय को बिल्कुल सफल करना है, बाबा से पूरी प्राप्ति कर लेनी है। बाबा से लगन लगाओ, धुन लगाओ, हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। दुनिया में वर्षा लौकिक में नहीं मिलता है तो लड़ने बैठते, कोर्ट केस करेंगे, पाइप ऐसे की प्रॉपर्टी बाप दादा की होगी उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और बाबा यहाँ बेहद का वर्षा दे रहा है, तो हम उमंग से उठते ही नहीं। पूरी प्राप्ति करनी, बाबा मुरली में क्या कहता, बच्चे पूरा वर्षा ले, पूरा सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान माना सप्त प्रधान, जो हमारे मूल सात गुण हैं उनमें संपन्न बनना। पता है ना सात गुण हमारे कौन से हैं असली? वाह भाई वाह, पीछे से जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, अपने सात गुण का पता है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये हर आत्मा के मूल सात गुण हैं। इन सात गुणों में संपन्न बनना उसको सतो प्रधान कहते हैं। सात गुणों में स्वरूप बनते हैं तो ऑटोमेटिक सर्व गुण संपन्न बन जाते। कितना सहज पुरुषार्थ बाबा ने कर दिया। जब सुनते हैं कि सर्व गुण संपन्न बनना है तो सोचने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे, किस किस गुण में, एक गुण आता है तो दूसरा गुण छूट जाता है, तो भारी लगता है। बाबा ने सहज विधि बताई कि सर्व गुण सात गुणों का ही विस्तृत स्वरूप है, सात गुणों से ही सर्व गुण बनते। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा पावन बनना है। कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं? हाँ भाई, उमंग से बोलते नहीं है, क्या बात है? हाँ भाई, बहनों को देख रहे हैं। हाँ, खुद को नहीं बोलना है क्या? अब हम संगम युग से सतयुग की ओर जा रहे हैं ना, कलयुग से निकल कर संगम युग में तो आ गए ना, कि अभी भी एक पांव है कलयुग में। बाबा कहते हैं ना, एक पांव कलयुग में होगा तो उमंग उत्साह नहीं रहेगा, अंदर कोई कमी होगी तो नशा नहीं चढ़ेगा। इसलिए कलयुग से पूरा निकल जाना है और पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। कई अफसोस करते हैं कि अरे कलयुग में तो बड़ा मौज करते थे हम, तो फलानी होटल में बार बार खाने जाते थे। उनको याद आता है, याद नहीं करना है, बिल्कुल वहां से बुद्धि निकाल देनी। अब हमारी यात्रा है संगम युग से सतयुग की ओर, जहां कोई सतयुग में विकार नहीं है, कोई कमजोरी नहीं। उस दुनिया में हमें जाना है तो अपने आप को लायक भी बनाना है ना। देखो हम भारत में रहते हैं, सबको उमंग रहता है ना कि अमेरिका भी घूम के आवे, हाँ, या लंदन घूम के आवे, या हांगकांग जाए, कुछ नहीं तो चलो दुबई जाके आवे, इच्छा तो रहती है ना। पर अगर हमें और देश में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट पहले तो बनाना पड़ेगा कि हम भारत के लायक नागरिक हैं, फिर उस देश का वीजा लेना पड़ेगा, और वो वीजा तब मिलता है जब वहां के रूल्स रेगुलेशंस का आप पालन करते हैं, वहां के नियम अनुसार आप चलने के लिए तैयार है तो आपके थोड़े दिनों का वीजा देते हैं। अब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी नियम है, रूल्स रेगुलेशंस, तो हमें तो एक युग से दूसरे युग में जाना, तो हमें अपने आप को योग्य बनाना है ना। बाबा ने हमें निश्चिंत, निर्भय, बेफिक्र बनाया। दुनिया में कोई हमारी जवाबदारी लेने तैयार है? कुछ आयु होने के बाद माता पिता भी कहेंगे कुछ काम करो, कमाओ, अपने पांव पर खड़े हो जाओ। बाबा ने कहा ना, माता पिता का कर्जा उतारो, हमारे को तो और ही माँ बाप की सेवा करनी। हर एक को खुद कमाना होता है और अपना जीवन चलाना होता है। कोई भी छोटा मोटा मेहनत का काम करो और कुछ भी कमाओ, पर हर कोई हमसे क्या चाहते हैं कि हर एक अपने पांव पर खड़ा रहे, चाहते हैं ना। तो हमें क्या करना है? अपने आप को योग्य बनाना है, बल्कि उपयोगी बनना है, बाबा का साथी, मददगार बनना है। क्योंकि हमें चिंता, फिकर, भय से बाबा ने मुक्त करा दी। ऐसी जीवन पद्धति बाबा ने हमें सिखाई, जो हो चुका बाबा ने कहा ड्रामा, फुल स्टॉप। कितनी बड़ी बाबा की उदारता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं दंड दूंगा, नहीं, बाबा ने कहा फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, अब गफलत नहीं करना। बाबा का हमको कहना क्या है? अब गफलत नहीं करना। ज्ञान नहीं था, विकारों में डुबके लगाते रहे, अब गफलत नहीं करना। अब ज्ञान स्वरूप जागृत आत्मा बनना है, माया को पहले ही पहचान लो, माया का शिकार नहीं बनना है। मन में इच्छाएं होती है, वृत्तियां जागती हैं, सावधान हो जाओ कि अब ये मेरा रास्ता नहीं। मन में ही माया को खत्म कर दो। मम्मा कहती है, अंदर ही अंदर माया को खत्म कर दो। किसको क्यों पता चले कि आपको माया आई? क्योंकि जब हम माया के शिकार होते हैं तो हमारे चेहरे से पता चल जाता है, हमारी चलन और चेहरे से पता चल जाता है, क्योंकि हम उमंग उत्साह कम होगा, पढ़ाई में ढीले हो जाएंगे, पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं रहेगी, सेवा नहीं करेंगे, ये सब चिन्ह माया के है ना। इसलिए मन में ही माया को खत्म कर दो, खुद ही शक्तिशाली बन जाओ कि नहीं, अब मैं बाबा का बच्चा, मुझे सत्य ज्ञान मिल चुका है, मुझे राजयोगी जीवन जीने की कला मिल गई, अब मुझे माया का शिकार नहीं बनना। बाबा ने तो कितनी बुराइयों से छुड़ाया, कितने व्यर्थ खर्चों से मुक्त किया, नहीं तो लोग व्यसन में, फैशन में, फिल्मों में, होटलों में कितना खर्च करते, हिसाब लगाओ कभी। ज्ञान नहीं था तो ये सारे खर्चे कितने थे माताएं, हर आए दिन नई बैंगल्स चाहिए, नए टीके चाहिए, नए कपड़े चाहिए, कितने खर्चे, व्यसनों के कितने खर्चे, समाज की अंधश्रद्धा, गलत रस्मों में कितने व्यर्थ खर्चे होते। बाबा के बने, बाबा ने हमारा धन बचाया, मन ठीक किया, हमारा तन भी पवित्र बन गया। अब कोई फिकर है कर्म की गति? हाँ, नहीं मिलती थी, अब तो मिलती है ना, समझ आ गई ना भाई, बीमारी आई कोई बात नहीं, किसी ने थोड़ी भेजी है, हमारे हिसाब से आई है ना, अब इसमें भगवान से नाराज होने की कोई बात है क्या? नहीं, बाबा कहते हैं कि जो दवाई कर सकते हो वो करो, दवा करो, दुआ करो, बाबा कहते हैं ना दुआ करो, समय पर क्या काम आता है, दुआ, और योग करो। बाबा ने सादा सरल सात्विक जीवन जीना सिखाया, सादा जीवन, नहीं तो आजकल तो भाई ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, कितने खर्चे होते। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कौन सा ड्रेस पहना है? फरिश्तों का व्हाइट ड्रेस, व्हाइट लाइट, कोई ढूंढना नहीं, मैचिंग ढूंढने में कितना टाइम जाता था माताएं। बाबा ने सिंपल काम कर दिया कि सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनो, सादा सरल सरल जीवन, सच्चा और सरल जीवन, कोई तेरी मेरी प्रपंच करने में खिटपिट में जाना नहीं, नहीं तो मन सारा दिन किस में लगता था, तेरी मेरी इसकी उसकी यहाँ की, इसको ऐसा करूं उनको ऐसे करूं, इन सब प्रपंच छल कपट से मन को मुक्त कर दिया। ये हमारी कमजोरियां हैं कि बाबा कहते हैं हम नहीं करते हैं इसलिए मुश्किलें आती। बाकी ज्ञानी और योगी आत्मा के सामने अब कोई बात आ ही नहीं सकती। सत्य ज्ञान मिला, सद्बुद्धि मिली, 50% फिकरा चिंताएं तो ज्ञान में आते ही खत्म हो गई, हुई ना। कोई भी आपको अपना दुख दर्द बताते हैं तो अब हम उनको क्या कहते कि आप भी सेंटर में आओ, आप भी ज्ञान लो, 7 दिन का कोर्स करो, यही रास्ता बताते हैं ना। बाबा ने ज्ञान ऐसा दिया है 50% चिंता फिकरें खत्म हो गई, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये सारी मुसीबतें थी। और सात्विक जीवन हमारा बाबा ने बनाया, हमारे जीवन से अब विकारों की बदबू नहीं आती, सात्विक जीवन बाबा ने बनाया। तो कितनी फिकर चिंताओं से मुक्त किया कि नहीं, कलयुग के अंत समय जब हिसाब किताब फाइनली क्लियर करने का समय है, जैसे हर वर्ष मार्च एंड में अकाउंट क्लियर होते हैं ना, ये कल्प का हिसाब क्लियर हो रहा है। ये समय ही है रहे सहे हिसाब किताब के कारण कोई भी विघ्न मुसीबतें तूफान आने का ये समय। पर इस समय बाबा ने आकर सत्य ज्ञान देकर प्यार करके शुभ भावना रख के ऊंची दृष्टि रख के हमें कितनी बातों से मुक्त कर दिया, और हर बात में हर क्षण अब हमारा साथी कौन है, बाबा। कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारा साथी बन जाए तो हम कितने निश्चिंत हो जाते। एक छोटा बच्चा अपने बाल मित्रों से खेलते हैं, लड़ते हैं, एक दो को मारपीट करते हैं, बच्चा कमजोर है, भागता भी जाएगा और कहता भी जाएगा, देखना मेरे पापा को कह दूंगा, मेरा पापा बहुत पावरफुल है, तुमको सीधा कर देंगे, मैं मेरे भाई को बताता हूँ। खुद में ताकत नहीं है, खुद तो भाग रहा है पर डरा भी रहा है। तो चलो भाई, हमारे में भी नंबरवार शक्ति है पर साथी कौन है, बाबा है। पर जहां याद करो वहां बाबा आपका साथी, आप याद ही नहीं करेंगे तो बाबा साथी कैसे बनेगा। जहां बाबा वहां हम बच्चे, जहां हम वहां हम बाबा को याद करें तो बाबा हमारे साथ है। बाबा ने ऑफर कर दी है कि मैं हर क्षण तुम्हारा साथी बनने तैयार हूं। पर हम बुलाएं, याद करें, तब तो बाबा साथी बनेगा ना। बस याद किया, बाबा हमारे साथ है। अनुभव करो, ऐसी कोई न कोई आत्मा को निमित्त बना देंगे, हमें मदद मिल जाती है। बाबा में पूरा निश्चय, पूरी लगन, पूरा समर्पण। भगवान हमारी छत्र छाया बना है, भगवान हमारा साथी बना है। ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, ये सत्य है। कदम कदम पर बाबा मदद करते, इसलिए शारीरिक बात है, आर्थिक बात है, पारिवारिक बात है, कोई भी बात, बाबा हमारा साथी। पर श्रीमत पर चलना है, ऐसे नहीं मुसीबत विघ्न आवे और श्रीमत छूट जाए, नहीं। यही तो परीक्षा की घड़ी थी, यही तो हमारी दृढ़ता का टेस्ट था, यही तो क्षण था, वहां ही तो ज्ञान और श्रीमद् धारण करना। उस समय अगर बुद्धि विपरीत कर दी तो मदद का अनुभव कैसे होगा। इसलिए आज के स्लोगन में बाबा ने क्या याद कराया, करण करावन हार, बाबा हमारे साथ है। हम करण हार है, करना तो हमें है ना, क्योंकि पाना हमें है ना। स्वर्ग का लड्डू किसको चाहिए, हमें चाहिए ना। बाबा को तो स्वर्ग में आना नहीं है ना, प्राप्ति हमें चाहिए तो करना हमें है। परंतु करण हार हम है, करावन हार बाबा है। जिस मदद की आवश्यकता है वो ही मदद बाबा करेंगे। बताते हैं ना भक्तों के भी कितने किस्से गाए हुए, भगवान ने उनकी हुंडी भरी। जो मदद चाहिए बाबा करेगा, पर बाबा मैं आपके तरफ से निमित्त करनहार हूं, बस आपकी श्रीमत अनुसार मुझे करना है, आप करावनहार। बाबा से बातें करते हो कि नहीं करते? दिल की हर बात बाबा से कर तो हल्के रहेंगे, दिल की हर बात बाबा से कर। और बाबा से बात करने का समय कौन सा है? अमृत वेले बाबा हमसे मिलन मनाते, अच्छे अच्छे इसके कारण वर्षा लेना छोड़ देते हैं, बाबा अमृत वेले उठा नहीं जाता है। परंतु नहीं, उठना है, निंद्रा जीत बनना है, रात को टाइम से सो जाओ 10 बजे के आसपास, तो आराम से आप 3:30-4 बजे उठ सकते हैं। अमृत वेले भोलानाथ बाबा सभी भंडारे खोल कर बैठता है, ये खुद बाबा ने कहा। अमृत वेला किताब पढ़ो, उसमें ये सारे पॉइंट्स है। बाबा ने कहा उस समय भोलेनाथ बाबा को खुश करना चाहो, मनाना चाहो, रिझाना चाहो, रिझा सकते। बाबा का बच्चा बनकर दिल के हर बात बाबा को कर दो, बाबा आपको राइट बात टच करेगा या मुरली में जवाब दे देगा। रोज की मुरली से जवाब मिलते हैं ना, तो हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहे। बाबा का बच्चा बन जाओ, बच्चा निश्चिंत है ना, माँ बाप पालना करते रहते। तो जितना प्रैक्टिकल हर नियम मर्यादा दिनचर्या कर्म सब में जितना बाबा को फॉलो करके चलेंगे, बाबा जिम्मेवार बन जाता है, हम निमित्त बन जाते हैं। इतना हल्का बाबा बना देते हैं। हमें तो रोज रोज बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा आप मिल गए तो हम क्या से क्या बन गए, नहीं तो हम तो दुबन में फंसे हुए थे, विकारों की कीचड़ में फंसे हुए थे। दुनिया के हालात देखो, कितने चिंताओं में फिकरों में है, क्योंकि इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है। इच्छाओं के कारण दुखी हैं, भागते रहते हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं, संतुष्टता नहीं। और एक दो के कंपैरिजन में और इच्छाएं ईर्ष्या द्वेष में क्या क्या करते रहे। हमें कोई इच्छा नहीं, हम सब संतुष्ट है। हमें जो जीवन में मिला है हम संतुष्ट है। हम मेहनत करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, परंतु असंतुष्ट नहीं। हम कौन सा गीत गाते हैं, पर सच्चे दिल से रियलाइजेशन के साथ गाओ। रियलाइज करो बाबा मिला, सब कुछ मिला, कैसे। बाबा ने हमारे तन में शक्ति भर दी, मन में शक्ति भर दी, हमारे धन में बरकत भर दी, हमारे योगी जीवन, अच्छी धारणाएं, हमारे अच्छे व्यवहार को देख हर कोई हमारा सहयोगी बन जाता। बाबा बरकत भरता है। तो सब बेफिक्र बादशाह, हाँ बेफिक्र बादशाह है ना, बेगमपुर के बादशाह है, हाँ देखो ढीला ढाला जवाब दे रहे। एकदम ताकत से नहीं बोलते हैं, प्रयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो, प्रयोग करो। बाबा हमारे भंडारे भंडारी भरपूर करते हैं, सिर्फ सेंटर की नहीं भरते, आप सबकी भी भरते, क्योंकि आप बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं। ट्रस्टी है ना, कि अभी भी अपनी गृहस्थी है, ट्रस्टी है, हम निमित्त है इस जन्म में, जो माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे मिले हैं उनके लिए निमित्त ट्रस्टी। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे खुद खुद को रियलाइज कराओ, अपने आप को महसूस करा। जब कभी भी थोड़ा उमंग उत्साह कम हो, दीवा थोड़ा भी टिमटिमाने लगे तो क्या करते हैं, तो फिर घी डालते, खुद में फिर ज्ञान घी डालो, याद कराओ, फिर देखना नेचुरल हो जाएगा, फिर हमारी हिम्मत उमंग उत्साह नशा निश्चय कोई कम नहीं कर सकता है। तो हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, सभी खड़े हो जाइए। लाल लाइट करें, कब से बैठे हो ना, तो थोड़ा हाथ पांव ठीक कर लो, हाथ पांव स्ट्रेच कर लो, हाथ ऊपर खींचो, ऊपर करो और ऊपर खींचो, देखो छत को पकड़ सकते हो। हाथ खींचो तो हाथ ठीक हो जाएंगे, ऊपर और खींचो, हाँ बस नीचे, अब पांव स्ट्रेच करो, पांव ऊंचे नीचे करो, हाँ ऐसे ऐसे देखो बरोबर, थोड़ा कदम ताल करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सिर्फ शरीर ऐसे ऐसे नहीं, पांव भी, हाँ देखो, खड़े खड़े अपने स्थान पर दौड़िए, हाँ देखो ये। अरे अपना बैग तो नीचे रख दो। बाबा कहते हैं मुझे गठरी दे दो, पर खुद पर ही रख के चलते। अच्छा अब गर्दन स्ट्रेच करो, आगे झुकाओ पीछे झुकाओ, लेफ्ट राइट थोड़ा गोल गोल घुमाओ सहज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाओ, अब कमर ठीक कर लो, कमर आगे झुको, कमर से थोड़ा पीछे, संभाल के हाँ गिरना नहीं, राइट साइड झुकाओ कमर, लेफ्ट साइड, हाँ ऐसे करो, हाथ से कमर ठीक करो। बहुत अच्छा। अब स्व में स्थित हो जाओ, भ्रुकुटी में आ जाओ। हम कुछ अभ्यास खड़े खड़े करेंगे। जिनको तकलीफ हो, जब बैठने का मन करे बैठ जाना। मैं आत्मा, बाबा का अविनाशी अमर वारिस बच्चा हूं। मुझे बाबा जैसा बनना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना। राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड, स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं याद करता हूं और बाबा मेरा साथी बन जाता है। अब मैं अकेली नहीं हूं, निरंतर बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे जीवन सारथी है। और राइट साइड घूम जाइए। यह संगम युग का कल्याणकारी वरदानी समय है। ये चढ़ती कला का, उड़ती कला का समय है। हे हिम्मत दे बच्चा, मदद दे बाबा। मेरा योग बाबा का सहयोग, ये समय है सत्कर्म के बीज बोने का, और अनेक गुणा 21 जन्मों का सतयुगी दैवी प्रारब्ध पाने का। राइट साइड घूम जाइए, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है पूरे विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करने। स्व कल्याण से विश्व कल्याण तक पहुंचना है। इस जन्म में जो भी लौकिक मित्र संबंधी हैं, जो अलौकिक परिवार की आत्माएं हैं, हमारे आसपास के समाज, देश और विश्व की आत्माओं को बाबा से जोड़ना है, उन्हें सुखी बनाना है। बाबा ने हमारा कल्याण किया, हमें अन्य सभी आत्माओं का कल्याण करना है। प्रकृति, पशु, पंछी, पांचों तत्वों की मनसा सेवा करनी है। राइट साइड घूम जाए, मुझे स्वयं को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाना ही है। पूरी दृढ़ता और लगन से संपन्न संपूर्ण बनना ही है। अपने चेहरे और चलन से ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। प्यारे बाबा ने हमें विश्व के आगे निमित्त बनाया, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा के इस यज्ञ का नाम रोशन करना है। बैठ अब आप खुद मन ही मन बाबा को ये पांचों ही संकल्प बताइए। आप खुद बाबा को मन ही मन बताइए, ये पांचों ही संकल्प बाबा के आगे रिवाइज करिए, दोहराइए।
बहुत सुंदर लाभ लिया आपने गीता दीदी के क्लास का, तो एक हाथ हिलाकर धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ तो हम अभी आपका परिचय सबके सामने रखते हैं। गीता दीदी बाबा अव्यक्त हुए तब ज्ञान में आए 1969 में, और फिर 10th बोर्ड के एग्जाम पास करके अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया 1972 में। और आरंभ में चूंकि आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा आदि आदि स्थानों पर सेवाएं की और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सबजोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं देते रहे। और फिर 1993 में आपको भी बहुत सुंदर स्वर्णिम अवसर मिला मधुबन निवासी बनने का। ज्ञान सरोवर अकेडमी का उस समय निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था 1993 में। बाबा ने आपको वहाँ रखा, करीब 17 वर्षों तक आपने वहाँ का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसेप्शन, अकोमोडेशन आदि सुचारू रूप से देखा। और फिर 2010-11 से बाबा ने शांतिवन की बेहद की सेवाओं को देखते हुए आपको शांतिवन में बेस्ड किया। आप वैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे पास जो राजयोग शिविर चलते हैं, भट्टियाँ चलती हैं, उसकी बहुत ही कुशल प्रभावी शिक्षिका हैं और देश विदेश में बाबा की सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। अपने युवा काल में युवा रैलियों में भी पार्टिसिपेट किया है, तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से कार रैली को भी आपने आयोजित किया है। बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व है आप और आपने उनकी क्लास से तो अनुभव कर ही लिया होगा। तो दीदी का बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।